रानी लक्ष्मीबाई को बच्चा हुए अब 3 महीने बीत चुके थे, परंतु वे सिर्फ किले के उद्यान में घूमने के अलावा कोई व्यायाम नहीं कर पाती थी। सारा समय बच्चे को दुलारते जाता था। राजा के स्वभाव में भी अंतर आ गया था। ज्यादा समय रानी और बच्चे के पास बिताते थे। फैसलों में कठोरता कम हो गई थी। जनता से उनका और उनसे जनता का प्यार बहुत बढ़ गया था। उन्हीं दिनों तात्या टोपे झांसी आए और रानी से मिले।
आपको दादा के देहांत का हाल तो मालूम हो गया था, पर पेंशन छीने जाने की बात नहीं बताई। आश्चर्य है।
मेरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये समाचार मुझ तक आने नहीं दिया गया था, पर इन अंग्रेजों ने बड़ी बेईमानी की।
उनकी नीतियां तो सारे देश को डस रही हैं, पर गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, अवधी नवाब सब मुक बैठे हैं। हमने पेंशन की अर्जी फरियाद की, बड़े लाड साहब से लेकर विलायत तक सुनवाई करवाई, पर किसी की कानो कान जू तक नहीं रहेंगी।
तो अब
तो इसीलिए नाना साहब और राव साहब ने अपने विवेक और तेज पर भरोसा करते हुए आपके पास भेजा है। एक तरफ लखनऊ के नवाब गायकों नृत्यों से घिरे हुए हैं, वहीं बड़े जमींदार कहते हैं पुरुषार्थ करो, हम साथ देंगे।
तोपे, अभी समय नहीं आया है, आपसी उपद्रव कम होने दो, जनता को जरा सांस लेने दो, तब बाजीराव और शिवाजी महाराज के आदर्शों को जगाने का समय आएगा।
तब नाना साहिब से क्या कहूँ?
यही के सतर्क रहकर प्रतीक्षा करें और आधारों को अडिग रखें। मुझे भी स्वस्थ होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही।
तात्या टोपे चलने को हुए तो रानी ने कहा,
तोपे, वैसे दिल्ली के क्या हाल है?
क्या कहें, 90,000 रुपए साल की पेंशन मिलती है, कविताओं कवियों में उलझे रहते हैं, कंपनी ने नजर भेंट तो बंद कर दी है, ऊपर से कहलवा दिया है कि खुद को बादशाह कहना भी छोड़ दो।
जहर का ये घूंट क्या नवाब यूं ही पी जाएंगे?
अब तो समय ही बताएगा।
तात्या का मन झांसी में और रुकने का था, पर संदेश नाना साहेब तक बिठुर पहुंचाना ज्यादा जरूरी था, और नाटकशाला भी बंद थी, पर नाटकशाला वालों के वेतन वो बंद न थे।